जन्नत बाजार में फुलवा की बोली लगभग तय हो ही चुकी थी कि तभी अचानक से एक आवाज आई। इस आवाज वाले व्यक्ति ने सबसे ज्यादा बोली लगाई थी। वो रकम इतनी ज्यादा थी कि वहां उपस्थित सभी लोग हैरान हो गए और उन्होंने मुड़कर उस व्यक्ति को देखा तो वहां निक खड़ा था। निक को सबसे ज्यादा रुपए लगाते देख उन लोगों के साथ साथ रूपाली और सुनहरी भी हैरान हो गए। फुलवा को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिसे वो भैया कहकर बुलाती थी और इतना चाहती थी वही उसे सबसे ज्यादा रकम लगाकर खरीदेगा। निक आगे बढ़ते हुए उनकी तरफ गया तो फुलवा डर के मारे कांपने लगी। रूपाली ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा था ना ताई, ये साहब बड़े छुपे रुस्तम हैं। पहले दिन आए थे तो इतने सीधे लगते थे जैसे भगवान ही हो, और अब देखो इसके अंदर का हैवान सामने आ ही गया। सुनहरी ने कहा, कैसी बात कर रही है रूपाली, ये हमारे लिए भगवान समान ही है, इन्हें हैवान तो मत बुला। उधर निक की इस हरकत का किसी को कोई आइडिया नहीं था कि वो आगे आकर सबसे ज्यादा बोली लगाएगा। मिस्टर मुखर्जी जो कि कॉल के जरिए उनसे जुड़े हुए थे और उनकी सारी बात सुन रहे थे, वे निक की इस हरकत से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। मिस्टर मुखर्जी ने गुस्से में कहा, ये क्या किया इसने, मैंने पहले ही कहा था निक से कि इमोशनल होकर कोई भी डिसीजन ना ले, हमें ऊपर भी जवाब देना पड़ता है, ये हमारा पर्सनल मिशन नहीं है जो वो ऐसे पैसे लगाकर हर एक लड़की को खरीदेगा। मिस्टर मुखर्जी ने भी नाराज होकर कहा, मुझे कैप्टन निक से ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, हम कुछ प्लानिंग करके कुछ करने का सोचते लेकिन उससे पहले ही उसने इम्पल्सिव होकर डिसीजन ले लिया। रॉन ने कहा, सॉरी मिस्टर मुखर्जी, निक ऐसा ही है, वो अपने सामने गलत होता हुआ बिल्कुल नहीं देख सकता, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। यहां तो बात फिर भी कुछ पैसों की थी, आप फिक्र मत कीजिए, आपको कोई भी नहीं बोलेगा ये पैसे देने के लिए, वो सब कुछ अपने आप ही हैंडल कर लेगा। मिस्टर मुखर्जी ने कड़े शब्दों में कहा, मुझे उन पर पूरा भरोसा है, तभी आपके मना करने के बावजूद हमारी तरफ से आपको बार बार इस मिशन में इन्वॉल्व होने की रिक्वेस्ट की गई थी। आई होप आगे से वो कोई भी डिसीजन इम्पल्सिव होकर नहीं लेगा, इस बार तो मैं संभाल लूंगा लेकिन आगे नहीं। एमा ने कहा, ओके सर, हम ध्यान रखेंगे, लेकिन अभी इस बच्ची को बचाना भी तो जरूरी था। जब मिस्टर मुखर्जी आश्वस्त हो गए कि फुलवा अब सुरक्षित है तो उन्होंने दूसरी तरफ से लाइन कट कर दी। उधर निक ने भी रूपाली और सुनहरी को पैसे देकर फुलवा को खरीद लिया। निक को ये सब करके खुद भी बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन फुलवा को बचाने का उसे यही तरीका नजर आया। सुनहरी ने एक आंख दबाते हुए कहा, तो साहद आज से नहीं अब से फुलवा आपकी, आज रात तो फुल ऐश होने वाली है आपकी। निक ने कहा, मैंने इसे खरीदा है तो ये मुझ पर डिपेंड करता है कि मैं इसके साथ क्या करूं और क्या नहीं। रूपाली ने कहा, हाँ बिल्कुल आप पर ही है, लेकिन आप इसे जन्नत बाजार से बाहर नहीं ले जा सकते हैं, आप फिक्र मत कीजिए, ऊपर कमरे में सारे इंतजाम बात कर दिए गए हैं, आप सोच भी नहीं सकते इतने अच्छे से कमरे को सजाया गया है। रूपाली ने शरारत भरी आवाज में कहा, बाकी आगे तो मुझे कुछ समझाना नहीं पड़ेगा ना। रूपाली की बात सुनकर निक ने जवाब नहीं दिया। बोली का काम खत्म होते ही जन्नत बाजार से भीड़ छटने लगी। रात के 11 बज रहे थे। जन्नत बाजार के थर्ड फ्लोर पर बने एक कमरे को अच्छे से सजाया गया था, उसमें चारों तरफ फूलों से सजावट की गई थी। फुलवा वहां डरी सहमी तैयार होकर बैठी थी। रूपाली जबरदस्ती निक को उस रूम में ले गई और उसे फुलवा के साथ कमरे में बंद कर दिया। रूपाली ने कमरे के बाहर से कहा, सुबह मिलते हैं साहब, एक एक बात अच्छे से बतानी होगी आपको मुझे, वो क्या कहते हैं आपके अंग्रेजी में, हैव फन। रूपाली हंसते हुए वहां से चली गई। फुलवा ने जब बंद कमरे में निक को देखा तो डरते हुए अपने कदम पीछे लेने लगी। निक को ये देखकर बहुत बुरा लगा, पहले मुझे देखकर कितना कंफर्टेबल थी कि देखते ही हक करने आ जाती थी, और आज बेचारी बच्ची इतना डर गई है कि अपने कदम पीछे ले रही है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये दिन भी आएगा, निक ने सोचा। निक ने फुलवा को समझाने के लिए उसके करीब जाने की कोशिश की तो वो चिल्लाकर पीछे हट गई। फुलवा रोते हुए ने कहा, मैं बोल रही हूं आप मेरे पास मत आइएगा, मैंने और दीदी ने कितना भरोसा किया था आप पर, लेकिन आप भी बाकी लोगों जैसे निकले, सही कहा था दीदी ने कि आप भी सभी मदर्स की तरह हैं, हम आपकी बातों में आना ही नहीं चाहिए थे। निक ने कहा, मेरा विश्वास करो, मैंने तुम्हें बचाने के लिए ये सब किया, तुम मुझसे डर रही हो, तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। निक अपनी सफाई दे रहा था लेकिन फुलवा पर उसकी बातों का कोई असर नहीं पड़ रहा था। उसे बार बार वही सब याद आ रहा था जब निक ने सबसे ज्यादा रकम लगाकर फुलवा को खरीदा था। फुलवा ने कहा, सही कहती है दीदी, सारे मदर एक जैसे होते हैं, आप भी वैसे ही निकले ना, मेरे पास मत आइएगा। निक ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, तभी अचानक प्रियल बेड के नीचे से निकल कर आई। प्रियल ने कहा, नहीं फुलवा, ये बाकी लोगों जैसे बिल्कुल नहीं है। निक ने आंखें बड़ी करके कहा, तुम फिर से आ गई, पता नहीं कब से यहां पर छुप कर बैठी हो, तुम्हें हर बार फुलवा की एग्जैक्ट लोकेशन का पता कैसे चल जाता है, ये सब आज कोई पहली बार तो हो नहीं रहा। फुलवा तुम मेरे पास आओ। प्रियल ने फुलवा को अपने पास बुलाकर गले लगा लिया। फुलवा भी प्रियल को देखकर थोड़ी कंफर्टेबल हो गई। फुलवा ने रोते हुए कहा, दीदी आप कहाँ रह गई थी, आपको नहीं पता ये भैया कितने बुरे हैं। प्रियल ने कहा, सही कहा बच्ची, मुझसे ज्यादा किसे पता होगा कि ये कैसे हैं। तुम समझाओ ना इसे, मैंने वहां पर सबसे ज्यादा पैसे इसीलिए लगाए थे ताकि इसे उस आदमी के साथ ना जाना पड़े। ये तो उल्टा मुझ पर ही गुस्सा कर रही है, निक ने परेशान होकर कहा। फुलवा ये बिल्कुल सच बोल रहे हैं, प्रियल ने उसे समझाया। प्रियल के समझाने पर फुलवा भी समझ गई। उसने निक की तरफ दोनों कान पकड़कर माफी मांगी। निक ने मुस्कुराते हुए फुलवा को गले लगा लिया और वो भी किसी बच्चे की तरह उसके चिपक गई। वो फिर से उसके साथ उतना ही सुरक्षित महसूस कर रही थी जितना पहले करती थी। अच्छा अब तुम आराम करो, काफी थक गई होगी, प्रियल ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला। मुझे बहुत डर लग रहा है, फुलवा अभी भी इन सब से निकल नहीं पा रही थी। भले ही वो प्रियल और निक के आने की वजह से वो थोड़ा सहज हो गई थी, लेकिन थोड़ी देर पहले जो भी हुआ वो सब भूलना उसके लिए इतना आसान भी नहीं था। आओ तो मेरे पास। प्रियल बेड पर बैठी और फुलवा का सिर अपनी गोद में रखा। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। क्या वो कहानी भैया की है, फुलवा ने पूछा। नहीं इनकी नहीं है, फुलवा ने कहा। तो जरूर आपके सपनों की राजकुमार होगी, निक ने अपने मन में बोला। हाँ तो वो भी मैं ही हूँ। फिर वो फुलवा के पास आया और कहा, फुलवा इसे छोड़ो, चलो मैं तुम्हें एक प्यारी सी कहानी सुनाता हूँ। निक वहीं बेड पे बैठ गया। अब फुलवा का सिर निक की गोद में था और वो धीरे धीरे उसके बालों को सहला रहा था। निक ने कहा, पता है एक बार एक लड़का था, उसके पास एक प्यारी सी प्रिंसेस थी, मतलब राजकुमारी थी। बिल्कुल दीदी जैसी, फुलवा ने बीच में पूछा। निक ने कहा, हाँ शायद, बिल्कुल तो नहीं कह सकते लेकिन कुछ कुछ इस जैसी। शायद ये फुलवा को एली के बारे में बता रहे हैं, इन्होंने कभी भी मुझसे एली के बारे में बात नहीं की कि वो कैसी थी। चलो इसी बहाने मुझे भी पता चल जाएगा, प्रियल ने सोचा और फिर निक से पूछा, क्या प्रिंस अपनी प्रिंसेस को पहले दिन से पसंद करता था। निक ने कहा,
नहीं बिल्कुल, प्रिंस तो उस प्रिंसेस से दूर दूर भागता था। वो उसे पसंद थी लेकिन उसे प्रिंसेस का एटीट्यूड नहीं अच्छा लगा, इस वजह से उसने उससे दूर रहना ही सही समझा। बट उसकी मॉम चाहती थी कि प्रिंस और प्रिंसेस हमेशा साथ में रहें। तो क्या वो दोनों साथ आ गए, फुलवा ने जिज्ञासा से पूछा। वो और प्रियल दोनों ही निक की कहानी काफी गौर से सुन रही थी। हाँ बहुत थोड़े से समय के लिए, लेकिन गॉड को कुछ और ही मंजूर था। कुछ टाइम बाद उस प्रिंस के पास ना तो प्रिंसेस रही और ना ही उसकी मॉम, निक ने उदास होकर कहा। फुलवा ने कहा, तो फिर उस प्रिंस ने क्या किया, वो तो अपनी माँ और अपनी राजकुमारी के बिना बहुत रोता होगा ना। हाँ बहुत, लेकिन थोड़े ही टाइम बाद उसकी जिंदगी में एक और राजकुमारी आ गई। और पता है इस बार जो राजकुमारी थी वो बिल्कुल तुम्हारी दीदी जैसी थी, ऐसा समझो तुम्हारी दीदी ही थी, फुलवा ने खुश होकर कहा। अरे वाह, फिर तो उस प्रिंस की जिंदगी में खुशियां वापस आ गई होंगी। नहीं, वो राजकुमारी भी उससे नाराज होकर दूर चली गई। ये क्या बच्ची को झूठी जहानी सुना रहे हो आप फुलवा, वो राजकुमारी उस प्रिंस को छोड़कर खुद नहीं गई थी। बिल्कुल, उस राजकुमार ने उस राजकुमारी को धक्के देकर अपने घर से बाहर निकाल दिया था, और ऊपर से ये भी कहा था कि तुमने मेरी पहली वाली प्रिंसेस को मार डाला है, प्रियल ने गुस्से में बोला। तुम चुप रहो, ये तुम्हारी स्टोरी नहीं है, ये मेरी कहानी है, तो मैं अपने हिसाब से सुनाऊंगा, अपना मुंह बंद रखो वरना बाहर चली जाओ यहाँ से, निक ने आंखें दिखाते हुए कहा। निक और प्रियल आपस में बहस करने लगे, तभी उनकी नज़र फुलवा पर गई जो कि सो चुकी थी। निक ने उसका सिर बेड पर लेटा दिया। वो प्रियल के पास आने की कोशिश कर रहा था कि उसी चक्कर में निक प्रियल के ऊपर गिर गया। प्रियल ने कहा, उठिए आप मेरे ऊपर से। और क्या बच्ची को गलत गलत बात सिखा रहे थे, मैं कोई गलत बात नहीं सिखा रहा था, तुमने अभी भी मेरी पूरी बात सुनी नहीं और ना ही खुद कुछ बता रही हो, बोलते हुए निक ने प्रियल के सर्जरी के निशान पर हाथ लगाते हुए कहा। बताओ ये निशान कैसे आया, आप मेरी मर्जी के बिना मुझे नहीं छू सकते हो, तो ऐसे हाथ मत लगाया कीजिए, खड़े हो जाइए मेरे ऊपर से, वरना तुम्हारा अपना वरना अपने पास ही रखो, अगर थोड़ा सा भी चिल्लाई ना तो आसपास के लोग यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे और मैं तब तक नहीं उठूंगा जब तक कि तुम मेरी पूरी बात नहीं सुन लेती हो, आज तो तुम्हें मेरी बात सुननी ही पड़ेगी, प्रियल ने अपने कान बंद करते हुए कहा। मैं आपकी कोई भी बात नहीं सुनने वाली हूँ, आप मेरे ऊपर से खड़े हो जाइए प्लीज, मुझे दर्द हो रहा है, निक ने प्रियल के कान से हाथ हटाया और बोला। अब तो तुम्हें सुनना ही पड़ेगा, मैं उस दिन तुम्हें नहीं निकालना चाहता था घर से बाहर, मेरी बात का विश्वास करो, मुझे मिस्टर जॉनसन और मिस्टर दत्ता की बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, मुझे पता था वो दोनों झूठ बोल रहे थे, मैं उस दिन उनसे बात करके वहां से निकल गया था, लेकिन मेरा मोबाइल वहीं रह गया था तो मैं वहां वापस गया, वहां जाकर मैंने देखा कि वो दोनों बात कर रहे थे कि निक अपनी बात पूरी करता उससे पहले प्रियल ने उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया। प्रियल की इस हरकत से निक को बहुत गुस्सा आया और उसने प्रियल के हाथ को काट लिया, तो प्रियल जोर से चिल्लाई।